वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जीओ, अज दा ए पावन पवित्र महावाक जितना वड्डा ईश्वर है उतनी वड्डी उसकी लीला है, तमाशा है। तो उसका मेरे पातशाह वर्णन कर रहे हैं। धर्म दे अनेकां पहलू ने वख-वख पहलुआं ते शब्दां दे राही साढ़े सामने गुरदेव विचार रखते हैं। शरीर जैसे कई अंगां दा जोड़ है, नौ खंड ते मन दे ही ने, पृथ्वी दे शरीर दे भी पैरां दा जोड़, हथां दा जोड़, गर्दन दा जोड़, फिर बाहां दे च पैरां दे च दो दो जोड़, इन्हां सारे जोड़ां दा नां शरीर है। हाथ जुड़े हुए ने, पैर जुड़े हुए ने, गर्दन जुड़ी हुई है, बाहर अंदरों पता नहीं कितनिया नसां जुड़ी हुई ने, कितने तंतु जुड़े हुए ने, अंदर खून बह रहा है, अंदर बहुत वड्डी क्रिया चल रही। तो धर्म दे भी अनेकां पहलू ने, अनंत पहलू ने। कई दफा मनुख कह देंदा है, एक शब्द ने ए आखे, दूजे ने ए आखे। कई जैसे प्रश्न करदे ने, करता धरता ते परमात्मा साडे हथ की है, इंज आखे कह देंदे। दरअसल असलियत ए है, साडे हथ जो कुछ है उसका दिता होया है, शक्ति उसकी दिती हुई है, समझ उसने दिती हुई है, प्राण उसने दिते हुए ने, जीवन वर्तन वास्ते दिता है। वर्तन सही हो सके समझ दिती है। समझ नो मनुख सही ढंग नाल भी वर्त सकता है, गलत ढंग नाल भी वर्त सकता है। जबान दिती है, इहदे नाल प्रभु दा नाम भी जप सकदा है, चंगे बोल मिठे बोल भी बोल सकदा है, और इसे ही जबान नाल किसे नूं गाल भी कढ सकदा है। जबान दोवें कम करती है। हथां नाल दान भी हो सकदा है, हथां नाल छीना झपटी भी हो सकती है, खोआ खाई भी हो सकती है। जीवन उसने स्वतंत्र रूप दे दिता है, पर चूंकि स्वतंत्रता उसे दी दिती हुई है, तो ब्रह्म ज्ञानी कह देंदे ने सब कुछ तेरा है, साडा की है। ठीक के एक पहलू बयान कीता है, इनू फिर दूजे रूप च लोकी पकड़ लेंदे ने, जदों जपाएगा उदों जप लवांगे, जदों चाहेगा उदों सत्संग कर लवांगे। ये च्वाइस परमात्मा दे नहीं है, ये चुनाव उसने साडे ते छोड़े है, पर चूंकि उसने छोड़े है, इस वास्ते भगत कहंदे ने सब कुछ तेरे कोल। जो साडा चुनाव है, इतनी खुल भी तेरी दिती हुई है, जे इतनी खुली ना देंदा, असी सिर्फ जबान नाल पाठ ही कर सकते, शुभ बोल सकते, अशुभ बोल ही नहीं सकते। तो शुभ बोलना साडा बजया होना सी, बंधन होना सी, कोई शुभ बोलना भी सिर दा भार बन जाना सी, क्योंकि बंधन सी, मजबूरी सी, बंधन सी, खुल दे देती है। और खुल इस तरह दिती है, हाथ विच दीवा भी दे देता है, किधरे भटके ना समझ भी दे देती है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे के कुसलात हाथ दीप कुवे परे। जिथे ए आख्या जांदा कीता करना सर्व रजाई, किच कीते किच कीचे जे कर सकिए, अपना कीता कछु न होवे, ज्यो हर भावे त्यो रखे। साडे बल दी सीमा है, भावे ओ असीम है। साडी समझ दी सीमा है, भावे प्रभु असीम है। साडी शक्ति दी सीमा है, भावे प्रभु असीम है। तो असी उस सीमित दायरे दे च ही कम कर सकते हैं। ये बंधन जरूर है। मच्छी दौड़ सकती है, भज सकती है, पर सागर दे च आखे नहीं, सागर तो निकल के मैं जमीन ते दौड़ना है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सागर नु छड़ के मैं आसमान ते उड़ना है, ये वो नहीं कर सकता। आसमान ते उड़ना चाहे नहीं उड़ सकेगी, मजबूर है, एदे हाथ कुछ भी नहीं। जमीन ते दौड़ना चाहे, भजना चाहे, नहीं भज सकेगी, नहीं दौड़ सकेगी, मजबूर है। पर सागर दे जिस पासे जावे मर्जी, जितना दौड़े एदी मर्जी है, गहराई च चली जाए, सज्जे पासे दौड़ जाए, खब्बे पासे दौड़ जाए, किधरे भी कलोल करे, खुल है, बिल्कुल खुल है। जितनी शक्ति दी सीमा है, समझ दी सीमा है, उदे स्वतंत्रता है। सीमा तो अधिक नहीं, सीमा तो अगे नहीं। उत्थे फिर गुरुदेव कह देंदे ने, जे है तेरे कोल हाथ च ते कुछ असीम करके दिखा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीमित दायरे च ही कम हो सकता है। सीमा प्रभु ने बनाई है, उस सीमित दायरे च जिस पासे असी जाइए, सज्जे जाइए, खब्बे जाइए, ये चुनाव फिर सैडा होगा, अगे जाइए भावे पिछे जाइए, ए चुनाव साडा होवेगा। इतना चुनाव भी जे साडा नहीं है, तो फिर इना अवतारा दे आन दी लोड़ भी नहीं सी, इना नू समझान दी लोड़ ही नहीं सी, इना नू इतनी टकरा मारन दी लोड़ ही नहीं सी, इना नू इतनी मेहनत करन दी लोड़ ही नहीं सी। ए मेहनत इस वास्ते कर रहे ने कि मनुख अपनी समझ दी सही वरतों कर सके, अपनी जबान दी सही वरतों कर सके, अपने हथियां पैरां दी सही वरतों कर सके। और मनुख कर सकदा है। है रखवाद न कीजे रे मन, सुकरत कर कर लीजे रे मन। गुरबाणी तेंज कहंदी है, तू शुभ कर करके कुछ भी प्राप्त कर ले, पर एक दायरा है, एक सीमा है, उत्थे फिर गुरबाणी कह देगी तेरे हाथ नहीं है। असीम कम तेरे हाथ देच नहीं है, क्योंकि तेरी शक्ति दी सीमा है, भावे परमात्मा असीम है, उदी शक्ति नहीं नापी जा सकती। केता तान सवालियो रूप, केती दात जाने कौन को। कुवत कुवत, किसको ए ताकत है, शक्ति है, ओ नापे शक्ति कितनी है, तान कितना है। केता तान, परमात्मा कुल शक्ति कितनी है जो उसने फैलाई हुई है। सवाले और रूप कितना क सुहापन है। हुण मैं अर्ज करा, सब कुछ निराकार तो आंदा है ना, तो निराकार विच कितना स्वप्न होवेगा, किधरे फुलां च प्रगट हो रहा है, किधरे फलां च, किधरे पंछियां च, कदी पशुआं च, किधरे मनुखां च, किधरे सूरज चंतारियां च। सुहप्पन दा केंद्र परमात्मा है, सब कुछ उस तो आंदा है। शक्ति दा केंद्र परमात्मा है, सब कुछ उसे तो आंदा है। रसां दा केंद्र परमात्मा है, सब कुछ उसे तो आंदा है। सुखां दा केंद्र परमात्मा है, सब कुछ उसे तो आंदा है। फिर हुण प्रश्न होया, दुख दुख जद मैं दित्ती हुई समझ दी सही वरतों नहीं करदा, जबान दी सही वरतों नहीं करदा, मैं हत्थां ते पैरां दी सही वरतों नहीं करदा, उदों की हुंदा है दुख। अनुभवी पुरुष कहिंदे ने दुख एक अलार्म है, वज पैंदा है वे तू गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एक अलार्म है कुदरत दी तरफों वज पैंदा है। जैसे मनुख जागे ही ना तो अलार्म वजदा ही रह जांदा है, वजदा ही रह जांदा है। दुख करके भी मनुख सुचेत ना होवे कि समझे ना, फिर दुख वद्दा जांदा है, वद्दा जांदा है, वद्दा जांदा है। समझ गया ते दुख विलीन हो जांदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये जिहड़ा पावन पवित्र वाक उच्चारण कीता है, इहदी भूमिका कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रसाद विच जो है सूरज प्रकाश विच लिखी है, गुरप्रताप सूरज। ऐ सामने संतोख सर जो अस्थान है पावन, पातशाह ने जैसे इसकी खुदाई आरंभ की थी, खुदाई करदया करदया एक बहुत बड़ा मटका थले खुदाई करने वाले आनो दिखाई देता। कवि संतोख सिंह जी का कथन सारा इतिहास ते उन्हां दा लिखे है, उन्हों ही पढ़ के फिर इतिहासकार अगे चल देन, कुछ फिर अपनियां गल्लां नाल जोड़ देन, शोध कर देन। पर मूल रूप दे जो इतिहासक ग्रंथ है साढ़े कोल वो सूरज प्रकाश ही है, मूल ओही है। भजे हुए सेवक आए गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल, सायादार दरखत दे थले बैठे सन, सब कुछ देख रहे सन। महाराज बड़ा वड्डा मटका है, अच्छा कढ़ के लियाओ। महाराज उहदे च एक योगी बैठा है, बंदा बैठा है मटके विच, अखां मीट के बैठा है, ढंग नाल फावड़ा चलायो। महाराज फावड़ा की चलाईए, वो मटका ते थां थां तो दराड़ां पै गईयां, असी थोड़ा भी हिलाया मटका ते टुट जाएगा। अच्छा तुसी ढंग नाल जोगी नूं कढ़ के लियाओ, चोट ना पहुंचे, उहनूं चोट ना पहुंचे। इस ढंग नाल ओ जो दराड़ां पै चुकियां सन उस बहुत वड्डे मटके दे, इक पासे करके जोगी नूं कढ़िया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज देखदे ने उस जोगी नूं, शरीर दे उत्ते काफी वाल आ चुके सन, जिहड़ी लंगोटी पहन के किधरे आसन मार के उस मटके च बैठा सी, ओ लंगोटी भी नदारत हो चुकी सी, खत्म हो चुकी सी, बिल्कुल नगन। चारों पासे शोर, बंदा निकलिया मटकी च, बंदा निकलिया, चारों पासे दियां सारियां संगतां भज के आईं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ, ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਉਦੋਂ ਦੁਆਪੁਰ ਸੀ, ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਆਪੁਰ ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਮਨ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨ ਸਾਇਓ, ਕਥੇ ਗਇਓ ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਇਹ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਟਕੇ ਚ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਇਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮਟਕੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਆਈ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਕੇ। ਯਮ ਰੋਕ ਲੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ, ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਜਦ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਪਏ, ਮੱਧਮ ਸਵਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਵਿਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣ, ਤੋ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਨ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨ ਸਾਇਓ, ਕਥੇ ਗਇਓ ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? और इस सारे शब्द नो सुन के इन्हे अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रखिया, आखरी दम तोड़ दिता, मुक्त हो गया, चला गया। सतगुरां ने फिर सरोवर दा नां संतोख सर रखिया, उदा नां सी संतोख दास। इस तरह दी ए भूमिका है, गाथा है। चूंकि जंगल विच दफन होया सी ते हुण शहर वस गया सी, वसदी सगन अपार अनूप रामदास पर, बड़ी संगनी आबादी। अपने चेलियां दे राही दफन होया सी, चार चेलियां दे राही हुण बड़ी भीड़, आले दुआले मकान महल नुमा। ये सारा पसारा देख के उहदे अंदर सारे संसार बारे प्रश्न पैदा होया, ये सारे दा सारा दृश्यमान संसार कित्थों आ जांदा है और कित्थे चला जांदा है। इनू कवि संतोख सिंह जी ने बड़े आलमाना ढंग च व्याख्या सहित लिखे है, बे इक्को ही प्रश्न रह गया सी, होर नहीं, बाकी सब हट गए, कोई प्रश्न नहीं सी। और प्रश्ना तो पता चल जाता है बंदा महान है, ये बंदा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे कुल कई पर्चियां आंदी ने, मैं नहीं जवाब देंदा, वो जवाब देने लायक ही नहीं आते, एवं थोड़ा भी समा खराब करना, अपना दिमाग भी खपाना। एक उदाहरण मात्र, जिससे कल चिट्ठी पाई मैनू किसे ने, असी ते फारन दे चाहते हाँ, इथे जद अमृत वेला आंदा उथे ते शामा आंदियां ने, फिर अमृत वेला केड़े महीने का, असी किस तरह उदो नितनेम करिए ते इशनान करिए। हुण चिट्ठी च अपना पता लिखिया नहीं सी, ना कोई टेलीफोन नंबर, नहीं ते मैं उन्नू कहना सी उथे अमृत वेला नहीं आंदा, उथे रात का चौथा पैर नहीं आता। ऐसा केड़ा देश है जिथे अमृत वेला नहीं आता? और जिस बंदे दी इतनी समझ भी नहीं, गुरबाणी की हक समझे, जब हर जगह दिन होंदा है, हर जगह रात आउंदी है, हर जगह शाम आउंदी है, हर जगह सवेर आउंदी है, हर जगह अमृत वेला आउंदा है, हर जगह संध्या आउंदी है। वो समझदा पिया जिवें भारत विच अमृत वेला है, इस देश विच उदों जागना चाहिए, उदों नाम लेना चाहिए। सिखण लगे किस तरह करिए, उदों ते असीं कम कार दे चाहुंदे आ जद इत्थे अमृत वेला आउंदा है। हुण इतनी समझ ने, इस तरह के प्रश्न आउंदे ने, मैंने खेड़दा हुंदा, मैंने जिक्र करदा, उस तों ही पता चलदा कुछ भी नहीं ते कुछ भी नहीं। बच्चियां दी गल है, बच्चियां दी गल, बच्चियां नूं अखर पढ़ाने आउणना तां ऊड़ा ऊंट, ऐड़ा अंब, कक्का कलम, चचा चाकू, ये तस्वीरां नाल बनानियां पैंदियां। चाकू नूं वेख के ख्याल आ जाए ये चचा है, कलम नूं वेख के ख्याल आ जाए कक्का है, और ऊठ नूं वेख के, ऊठ नूं वेख के ख्याल आ जाए ऊड़ा है, अंब नूं वेख के ख्याल आ जाए ये ऐड़ा है। एक चार पांच साल का बच्चा ऐसा पढ़े ते पढ़ाया जाए, ठीक है, ठीक है। और वो भी महीना दो महीना चार छह महीना करे, ठीक है। पर सत्तर अस्सी साल का बुढ़ा भी करे ऊड़ा ऊंट, ऐड़ा अंब, कक्का कलम, चचा चाकू, तो कहना पेगा शरीर करके बुढ़ा हो गया, अकल करके ते बच्चे तो बच्चे ही रहे, कुछ भी नहीं, इत कुछ भी नहीं। मनुख की अकल जिहड़ी विकसित होई है समाजिक तल ते, राजनैतिक तल ते, आर्थिक तल ते, धन नूं कमाउण दे च जितना चलाक हो गए, राजनीति दे च जितना चलाक हो गए, समाजिक रिश्तियां दे जितना सियाणा हो गया, धर्म दी दुनिया ते मूड़ दा मूड़ ही है। उत्थे इस दी अकल ने विकास नहीं कीता, क्योंकि उत्थे इसने अकल लाई नहीं। तो इस वास्ते धर्म दी दुनिया ते फोका कर्म कांड ही है, कर्म कांड। ऐसा ऐसा कर्म कांड है जिन्हों वेख के हासा ही आवेगा उस मनुख नू जिहदी धार्मिक तौर ते भी अकल दा विकास होया। फिर चूंकि कर्म कांडियां दी बहुत वड्डी भीड़ है, बहुत वड्डी भीड़ है, और कर्म कांड संस्कारां विच रम गया, सुभाव बन गया, ऐसा होंदिया होंदिया मनुख बुढ़ा हो जांदा है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, मैं सारे अवतारां दा जो इतिहास पढ़िया है, 99% जिन्हां लोगां ने मुखालफत की थी ते अवतारां नूं सजावां दित्तियां बुढ़े ने, जवान सहमत होए सन, किधरे किधरे बच्चे भी सहमत होए। मुखालफत रज के बुढ़िया ने की थी, जो बुजुर्ग हो चुके सन बेदी उन्होंने गुरु नानक दी मुखालफत की थी, जो बुढ़े हो चुके सन बड़ा ब्राह्मण उन्होंने गुरु नानक नूं बोतला बेताला कुराइया आख्या, जो बुढ़े मुनसफ सन ते बुढ़े धार्मिक मिशनरी सन, प्रीस सन, उन्होंने ईसा नूं सूली ते चाड़िया। इन्हां जवान नहीं सन, जवान ते कुछ सहमत होए सन, जवान ते कुछ पिछे चलन लग पे सन मोहम्मद साहब ने। जवाना ते किधरे किधरे धन गुरु नानक दी गल नू कबूलिया। बगदाद दे च वी जिन्हां ने पत्थर मारे बुढ़े मौलाणिया ने मारे, बुढ़े बिरद। कारण बचपन आंदे रहे उहदे नाल हिरदा ते जुड़िया ना, इस वास्ते हिरदे दी गंड भी ना खुली। बुढ़ेपे तक जांदिया जांदिया कर्म कांड सिर दा बोझ ही बन के रह गया, और कुछ नहीं, ना कोई रस, ना कोई आनंद, ना कोई दैवी गुण। जद इन्हां दे कर्म कांड तो जद कोई थोड़ा जिहा उल्ट हुंदा है, जैसे यात्रा है शरीर दी, जवान ओही हुंदा है जो बचपना छोड़ देंदा है, बुढ़ा ओही हुंदा है जवानी पिछे रह जाती है। कि रब्बी नियम है, रब्बी नियम है। यात्रा दे च की आउंदा है, एक पड़ा आया छोड़िया, दूजा पड़ा आया छोड़िया, तीजा पड़ा आया छोड़िया। धर्म दी दुनिया च मनुख इस तरह नहीं करता, जिहड़ा एक पड़ा पकड़िया तो हुण पकड़िया ही इत्थे ही रहना है, जाना ही नहीं। पड़ाव नूं पकड़ के बैठ जांदे ने, ऐसे मनुख बड़े कठोर हो जांदे ने, जैसे रुकिया होया पानी बदबूदार हो जांदा है, ऐसे ही बदबूदार हो जांदा है। आप सुन के हैरान हो गए कि सूबा सरहंद दा नवाब वजीद खां सतगुरां दे बच्चियां नूं वेख के कहण लगाई मासूम अस्त, ये तो बहुत छोटे ने। इहदा मतलब है उन्हूं जिहड़ियां रिपोर्टां दित्तियां गईयां सन, जवान आउण गए पेश होए, कहिंदे ई मासूम अस, इह तां बहुत छोटे ने, बिल्कुल मासूम ने। हुण दो धार्मिक बंदे बैठे सन और बुढ़े, एक काजी एक दीवान सुचान। दीवानगी दे ओहदे नूं प्राप्त कीता बुढ़ेपे विच, पक्का कर्म कांडी, पक्का कर्म कांडी, सवेरे शाम पाठ करन वाला, सारा कर्म कांड करन वाला। हिरदा नहीं जोड़िया, उमंग ते उत्साह नहीं, हर धार्मिक कर्म फोका कर्म कांड बन जांदा है। दीवान सुचानंद कहिंदा है सूबा सरहंद नूं ई मासूम नेस्त ई फरजंदे मारस्त ए मासूम नहीं ने सब दे बच्चे ने ये सुचानंद कहिंदा है ई मासूम नेस्त जिहड़े शब्द लिखे हुए ने ई मासूम नेस्त नवाब साहब ए मासूम नहीं ने ई फरजंदे मारस्त इते सब दे बच्चे ने ये वड्डे हो के डंग मारे ने इन्हां दा सिर अज ही कुचल देना चाहिए ये बुढ़ा नवाब कहिंदा शरा इजाजत नहीं देंदी मुहम्मद साहब दे बोल रहे ए मुसलमान तेरे हथों नाबालग दा खून जमीन ते नहीं गिरना चाहिए और स्त्री दा खून जमीन ते नहीं गिरना चाहिए खुदा माफ नहीं करेगा नहीं करेगा। तो सूबा सरहंद वजीद खां कहिंदा ते खून डुलेगा फिर खुदा माफ नहीं करेगा। हुण काजी अगों आ गया बगल देच कुरान शरीफ है लंबी चौड़ी तस्बी भी हाथे च है पांच वक्त नमाज भी पढ़दा है रमजान दे महीने च रोजे पूरे ही रखदा है हज भी करके आया है जकात भी देंदा है दो वक्त कुरान दी तलावत भी करदा है। वो कहिंदा है नवाब साहब खून डोलन दी की लोड़ है नहीं डोलदे इन्हां दोहां नूं दीवारां च चिंड देंदे आ गल खत्म ये फैसला काजी दा बगल विच कुरान शरीफ है हाथ विच तस्बी है पांच वक्त दा नमाजी है जुम्मे दी नमाज विशेष नमाज भी पढ़दा है जुमा रात नूं वीरवार नूं जकात भी देंदा है दो वक्त कुरान दी तलावत भी करदा है। ये सारा धार्मिक कर्म सिर दा बोझ बन के रह गया कर्म कांड हिरदा ते जुड़िया ऐसा बिरद ये गुरु गोबिंद सिंह नाल सहमत हो सकता है। सारी दुनिया दे अवतारां नूं होए थोड़े जिहा ने इतिहास नूं पढ़ोगे किधरे किधरे नौजवान ते सहमत होए बे ठीक है ते कह रहे जो कुछ ठीक है बस ये बुढ़े नहीं सहमत होए। सहमत होना ते एक पासे बड़िया बड़िया सजावां इन्हां बुढ़िया ने तजवीज कीतियां हां ये चिनगारी ये नवीनता किधरे जवानी च अंदर पैदा हो जाए फिर ये बुझदी नहीं ऐसे मनुखां नूं फिर गुरबाणी ऐसा कहिंदी है गुरमुख कदे बुढ़े ना है इन्हां दे अंदर दीपक जल पे नहीं ने बुढ़े जिन अंतर सुरत ज्ञान जिन्हां दा ज्ञान रोज रोज बद रहा है जिन्हां दी सुरत समझ रोज रोज उची हो रही है ये नहीं ने बुढ़े जिन्हां दा चेता कमजोर नहीं हो रहा रोज चेते शक्ति बद रही है रोज समझ बद रही है रोज इन्हां दा अनुभव बद रहा है इन्हां नूं बुढ़ा आखण दी की लोड़ है। गुरमुख कदे बुढ़े नहीं जिन अंतर सुध सुरत ज्ञान मनमुख बालक बिरद समान है मन दे अधीन चलन वाला ते कर्म कांड च फस गया अगर नाबालक बच्चा भी है तो बस जर्जरा ही है बुढ़े दे समान है इंज कह देता है गुरबाणी ते इंज कहती हुण भी मैं जद गौर नाल जगत विच देखदा थोड़ी बहुत किधरे कोई सच्चाई प्रगट करे अवल ते करदे नहीं क्योंकि भीड़ जेड़ी है ना उते कर्म कांडियां दी हुंदी है उते कर्म कांडियां दी गल नूं समझदे नहीं पकड़दे नहीं। हुण जिहड़ा ए पुछदा है असी ते यूरोप दे च रहिंदे आ इत्थे जद अमृत वेला आउंदा उते हुंदा नहीं तो फिर की करिए जिहनूं इतनी भी समझ कोई नहीं ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੋ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੁੱਢੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਕੇ ਗਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਹਾਉ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਰੁਕ ਜਾਏ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਝ ਰੁਕ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਗਾ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ, ਕਿਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਝ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੀ, ਸੂਝ ਬੋਝ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਗਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੜੇਗਾ, ਗਲੇਗਾ, ਗੁਣ ਖਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਖਾਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਜਲਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਪੜੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਤੇ ਜਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਕ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਅਨਰਥ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਜੋ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, एक पंक्ति की होया तेन पर्दा पैया अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लईए बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा समाई कहे कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जानिया पर मन माने लोग ना पतीजे हुण जो मेरी अवस्था बन गई है दुनिया खुश नहीं पतीज दी नहीं कबीर कारण इन्हां कर्म कांडियां दा हुण तालमेल नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा उते रोज पढ़दे पैने ते सुनदे पैने सुनंदे पैने हिरदा ते नाल जोड़दे ने वो किस तरह कबीर नूं बर्दाश्त कर लैण कबीर होर चोट कर देन बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई ओले जारे ओले गाड़े तेरी गत दो ना पाई मन रे संसार अंध गहेरा चौदिस पसरियो है जमजेरा ऐसे दोवे ही अंधे अंधेरे दे भटकते पैन किस तरह कोई बर्दाश्त करेगा सारा बनारस दे ब्राह्मणी समाज ते मुसलमान खिलाफ हो गया इन्हां खिलाफत करन वालियां दे ज्यादा तादाद बुढ़े कर्म कांडियां ते बुढ़े पिच एक शक्ति हाथ आ जांदी है प्रभता हुण भी कदी संसार दा इतिहास पढ़ोगे ना 97% दुनिया दे राजनैतिक जो राज करदे पए ने 97% बुढ़े ने सिर्फ 3% जवान ने बाकी तो बुढ़े ने अंदाजा ला लो सारे साडे देश ते कई इस तरह के बुढ़े ने चार बंदे चुक के कुर्सी ते बिठांदे ने चार बंदे उतारदे ने कुर्सी नहीं छड़नी भावे हाथ पैर कम दे पए पर इतनी ताकत किस तरह आ गई चलाक हो जाते बड़े चलाक हो जाते जवान रह जाते ये चलाक हो जाते ने दाव पेच इन्हों बड़े आते बड़े और हैरानगी की गल बिरधावस्था भी प्रभु की बुख ना हो प्रभुता की बुख हो तो जिंदगी ते अजाई चली गई और की है कुछ भी नहीं प्रभुता की बुख है प्रभु की नहीं पदार्थां की बुख है परमात्मा की नहीं तो जिंदगी ते अजाई चली गई ये लोग किस तरह भगतां नाल संतां नाल ते अवतारां नाल सहमत होणगे जिन्ने भगत बैठे ने इन्हां सारियां दी भगत मालज कथा पढ़ लैणी लोगां ने कोई सन्मान नहीं कीता सी किसे ने पत्थर मारे ने किसे ने तरह तरह दियां तौमतां लाईयां ने जिहड़े तीन दोष आउंदे ने कतल दुराचार और चोरी ये तीन इल्जाम कबीर ते लगे ने बनारस वासियां ने लाए ने चोरी का इल्जाम भी लाया दुराचारी का इल्जाम भी लाया कतल का इल्जाम भी लाया और गजब दी गले ना इल्जाम च कबीर पकड़िया भी गए सिकंदर लोधी ने जेल च पा दिता चोरां ने एक साध पकड़वा दिता चोर है कातलां ने एक निर्दोष नू पकड़वा दिता कातल है महान दुराचारियां ने एक महान सदाचारी नू जेल दे पा दिता पर कीता की जाओ ना बुढ़िया कोल ताकत बड़ी सी शक्ति बड़ी सी सिकंदर लोधी भी बुढ़ा हो चुकया सी उन्हों भी गुस्सा चढ़िया इंज कहिंदा है मुला मुनारे क्या चढ़े साई ना बैरा होए जां कारण तू वांग दे दिल ही भीतर जोए है कि रब नू बैरा समझे होए ऐन मुनारे ते चढ़ के कूकदा पिया पिंड दा एक छोटा जिहा गुरुद्वारा हुंदा है 10-10 हॉरन लाए हुंदे ने फोका कर्म कांड जे पूछ ली कला हुण ग्रंथी ते पाठ करदा पे सुखमनी साहब दा सुनन वाला ते एक भी नहीं है ये 10 हॉरन के वास्ते सारा पिंड सुने तू कदी सुनया जो पिंड सुन लवे कोई बीमार हो सकदा है कोई मासूम बच्चा इम्तिहान देण दी तैयारी कर रहा होना है पढ़ रहा होना है कोई कुछ कर रहा होना है कोई कुछ कर रहा होना है ਤੂੰ 10 ਹੌਰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੂਰ ਮਸਤੀ ਚ ਬਾਣੀ ਪੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣੇ, ਹਿਰਦਾ ਜੋੜੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਲੇ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਾਸ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕਤੀ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਜਨਮ ਚ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਮਨ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨ ਸਾਇਓ, ਕਥੇ ਗਇਓ ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਗ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੂਲ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਬਾਜੀ ਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ,
ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਟ ਲਿਖਲਾਈ।
ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਗਰ ਮਦਾਰੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਾਨ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਂਗ, ਇਹ ਸਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਸ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੋਲੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਾ ਸਾਰਾ, ਤਬ ਇਕ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਜਿਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਦਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਭ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਠਾ ਮਸਕਰੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਵਣ ਤੇ ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਇੰਝ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਨ ਕਿਤਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਵਾਂਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 15/10/1934 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਾਂ, अगर जन्मदिन बड़ी खुशी है तो साल दे साल मनांदे पए सारियां खुशियां कठियां होके इतना ही वड्डा दुख बनन गया मरण लगे इतना ही वड्डा जो इज्जत नो बड़ी गहराई नाल लेंदा है उहदे लई बेइज्जती बड़ी दुखदाई होवेगी जो सुखां नू बड़ी गहराई नाल लेंदा है उहदे लई दुख बड़ी मुसीबत दा बायस बनन गया जिन्हें जित नूं बड़ी गहराई नाल ले लिया फुल्लां दियां मालां जलूस निकल रहा जित गए ने जित गए ने यकीन जानो हार दा इतना ही संताप होवेगा हार दा इतना ही दुख होवेगा ते संसार बनाया प्रभु ने दो रंगी जन्म है तो मरण है जित है तो हार भी है इज्जत है तो बेइज्जती भी है नफा भी है तो नुकसान भी है जो नफे नूं बड़ी गहराई नाल ले लेगा नुकसान विच उतना ही वड्डा दुख होवेगा जिन्हें नफे नूं गहराई नाल नहीं लिया नुकसान होण लगया इतना दुखी नहीं होवेगा यह भी मैरज कर नहीं ते नुकसान हो गया लोकी पागल हो जाते हार्ट अटैक हो जाते परेशान हो जाते क्यों नफे नूं बड़ी गहराई नाल लिया उन्होंने ये नहीं देखे तो नहीं लै खेल हो रहे तमाशा परमात्मा का बहुत वड्डा तमाशा हो रहा है तू अपने जीवन नूं भी तमाशा ही समझ और कुछ नहीं खेल आवन जान एक खेल बनाया आग्याकारी की नहीं माया ये जमना ते मरना खेल है और कुछ भी नहीं पर खेल दी तरह सी लेंदे नहीं जन्म नाल सारियां खुशियां जोड़ देंदे हैं साल दे साल हैप्पी बर्थडे साल दे साल साल दे साल तोहफे साल दे साल मोमबत्तियां जलानियां खुशियां मनानियां नचना ते टपना ते हुण जितनियां खुशियां ये 70-80 साल दियां कठियां होणगियां मरण लगियां उतने ही दुख जे जन्म खेल सी तो फिर मरण भी खेल जिन्हें नफे नूं खेल समझे है उहदे लई नुकसान भी खेल है जिन्हें इज्जत नूं खेल दी तरह ले है उहदे लई बेइज्जती भी खेल है जिन्हें जित नूं तमाशे दी तरह ले लिया है यकीन जाणो उहदे लई हार भी एक तमाशा होवेगी दुखदाई नहीं होवेगा परेशान नहीं होवेगा पर मनुख बहुत गहराई च लै लैंदा है महाराज इस शब्द दे जो कुछ समझा रहे ने किधरे दिल दिमाग दे च गल बैठ जाए कि जिंदगी दे सारे दुख सुखां तो मनुख उपर उठ जांदा है खेड होर दी होर बन जांदी है महाराज कहिंदे सांग उतार थम्यों पा सारा तब एक है एक अंकारा वो वख वख जो रूप दिखा रहा सी बाजीगर जैसे अपना स्वांग उतारदा उहदा असली रूप प्रगट हो जांदा है सुख दुख एक स्वांग है जन्म मरण एक स्वांग है इज्जत बेइज्जती एक स्वांग है अंदर बैठी जीव आत्मा परम आनंदित ये उसका स्वांग है पर स्वांग नू जद बहुत गहराई नाल मनुख पकड़ लेंदा नहीं ये मेरी जिंदगी है स्वांग थोड़ी है तो फिर मरण का उतना ही दुख होवेगा हर नफे की मौत आउंदी है नुकसान हर इज्जत की मौत आउंदी है बेइज्जती हर जित की मोर मौत आउंदी है हार विच ते मौत उतनी दुखदाई बन जाएगी ये मौत उतनी परेशान करेगी हां जी मारो ए रूप की है कितों आउंदा है किथे चला जांदा है ये बनदा किवें है ये बिनसन हार किस तरह बिनस जांदा है ये वास्तविक की है सतगुर समझा रहे ने हां जी सागर दे चों दरिया दे चों पानी च अनेकां तरंगां उठदियां ने ये तरंगां सागर दा खेल ने ये लहरां सागर दा खेल ने ते लहरां दे च कोई छोटी लहर है वड्डी लहर है बहुत वड्डी लहर है बहुत वड्डी लहर है कोई बहुत उच्ची लहर है दूरों शोर मचांदी आ रही है पर है न सारिया लहर सागर का तमाशा है, ये बन दिया ने मिट दिया ने बन दिया ने मिट दिया ने। हां जी जिमें सोना है ओदे बहुत सारे गहने बना दईए, रूप बड़े दिखाई दे रहे, पर है ते सोना ही है, ते सोना ही। सोने नू कड़ा कह रहे हैं, सोने नू जो है अंगूठी कह रहे हैं, सोने नू हार कह रहे हैं, सोने नू कड़े कह रहे हैं। नाम अनेका हो गए ने, रूप अनेका हो गए ने, वजूद ते ओ ही है सोना, सोना वास्तविक ते ओ सोना है। पर ए इतने रूप बने ने, एक इंज समझ लो स्वांग है बाजी गर्दा। हां जी हर तरह के बीजा नू, बहु प्रकार के बीजा नू बीज के देखे है। बीज लंबी यात्रा ते चल के फिर अखीर देच की बन जाता है, फल देच फिर बीज, बीज बीज तक ही पहुंचता है। विचकार एक सारा तमाशा है, एक खेल है, बूटा होया, पत्ते होए ने, वड्डा होया, फिर फुल होए ने, फिर फल होए ने, फिर भी, फिर भी, तो विचकार की होया, विचकार ये सारा तमाशा ही है, एक खेल होया, ये सारे दा सारा बीज दा स्वांग सी, ते फिर वो बीज अपने असली रूप च प्रगट हो गया। महाराज कहते हैं बहुत सारिया बीजा नू बीज के देखे है, फल जो पकदा है ते फिर बीज बीज ही रह जांदा। हां जी इसे तरीके दे नाल जैसे फल पकदा है ते बीज फिर बीज है, इसी तरह ये संसार दी जद परले आउंदी है निरंकार निरंकार ही, निरंकार दा है सारा स्वांग। सूरज बने, चंद्रमा बने, जमीन बनी, वनस्पति बनी, पशु पक्षी बने, मनुख बने, फिर जैसे स्वांग उतार दो फिर बीज बीज, फिर निरंकार निरंकार। हां जी
सहस कटम है एक आकाश,
हजारा घड़े पानी दे भरे हुए पेने, ते इना विच हजारा आकाश दिखाई दे रहे ने। हर घड़े च झात मार के देखो पानी च आकाश दिखाई दे रहे, सारिया ही दिखाई दे रहे। हां जी
घटे
घड़े नाश हो जाते, कोई आकाश हजार थोड़ी ने, हजार घड़िया करके हजार दिखाई दे रहे है, आकाश तो एको ही है, एको ही है, उही आकाश रह जाता है। ये वख वख शरीर करके सब कुछ वख वख प्रतीत हो रहा है, वनस्पति करके, पशु पक्षियां करके सब कुछ वख वख प्रतीत हो रहा है। ऐ ते वास्तविक एक, उस एक ने ही अनेकां रूप जो है धारण किए हुए ने, जिन्हों कलगीधर पातशाह इंज कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। हां जी
माया विकार
स्वांग दे नाल किवें मनुख चंबड़ जांदा है, लीला नू लीला नहीं समझदा, तमाशे नू तमाशा नहीं समझदा, वास्तविक रूप दे देंदा है। कहिंदे ने, मैं पढ़ रहा सी एक दिन नाटक मंडली अमेरिका दी पुरानी, जिहड़ा लिंकन बनदा सी अमरीका दा पहला राष्ट्रपति, ते लिंकन दे नाम ते ड्रामा नाटक खेडिया जा रहा सी। जिहड़ा लिंकन बनदा सी हर शहर दे च रोज उहनू लिंकन बनना पैंदा सी। कहिंदे ने 15-16 साल लिंकन दी एक्टिंग करदियां करदियां वो अपने आप नू लिंकन ही समझण लग पिया, हर एक नाल इंज गलबात करे जिवें राष्ट्रपति, हुक्मनामे भी जारी करन लग पिया घर दे विच भी उसे तरीके नाल पेश आण लग पिया। उहनू डॉक्टर कोल लै गए, डॉक्टर ने यह किया लिंकन का पाठ करद्या 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 हूं समझ बैठा मैं लिंकन ना। आप दी ज्ञातली अर्ज करा फ्राइड कहा कहिंदा सी, और बिल्कुल वो सही है कि एक झूठ मनुख रोज बोलता रहे, बार बार बोलता रहे, कुछ महीने तक बोलता रहे, कुछ साल तक बोलता रहे, वो खुद भी समझण लग पेगा सच है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਆਪੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੋ ਚਿੰਤਕ ਫਰਾਇਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲਿੰਕਨ। ਉਹ ਲਿੰਕਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸੀ, ਸੁਆਂਗ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਆਂਗ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿੰਕਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿੰਕਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੁਆਂਗ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਗਲਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਲਿੰਕਨ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿੰਕਨ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰਾਮ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਵਣ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ, ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਈ ਦਫਾ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਜਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਜੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਦਾ ਬਾਣ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਗਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਂਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਫੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਫੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਨਫਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੰਧਨ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਆਂਗ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਸੁਆਂਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, आज्ञाकारी केने माया खेल नू सच समझ के फिर मनुख सारी चंबड़ सारा मोह जोड़ देंदा है ते दुखी होंदा है। महाराज कहने कोई आउंदा नहीं कोई जाउंदा नहीं। हां जी जिस दिन पूरे गुरुदेव की संगत मिली उसका उपदेश हिरदे दे च वसिया।